किया जा रहा है और ये जो भागवत सप्ताह प्रारंभ होने जा रही है ये थोड़ा अलग होगा। आप लोग जनरली जो भागवत सप्ताह
ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके इस दिल्ली के अंतर्गत नजफगढ़ के जो यहाँ पर इस सत्र में उपस्थित भक्त वृंद और मातृवृंद, आपने भागवत कथा पिपासु हैं, तो आप जो यहाँ एकत्रित हैं सभी को मैं अपने संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से स्वागत ज्ञापन करता हूँ। विशेष करके इस्कन वृंदावन की तरफ से, इस्कन वृंदावन के अधिदेव यहाँ विराजमान है वेदी पर, श्री श्री कृष्ण बलराम राधे श्याम सुंदर निताय गौर सुंदर और शिल प्रभुपाद, इन सभी के श्री चरण कमलों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको उनके अशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जनमानस को अपने बद्ध दशा से उद्धार करने के लिए जो भक्ति के उपाय प्रदान किए, तो उसमें पांच महा साधन दिए। इस पंच महा साधन से एक महा साधन है श्री मद्भागवत के श्रवण। उस इस भागवत को श्रवण करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जो उपाय बताए, उन्होंने कहे कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, कि इस भागवत को कोई अपने बुद्धि से अपनी समझदारी से अपनी व्याख्या से कि अभी आदि योग्यता से कोई टीका के सहायता से भी उसको हृदयंगम नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए एकमात्र आवश्यकता है भक्ति। भक्त्या तु ग्राह्य भागवतम न च मेधसा न च टीकया, ना तो बुद्धि से ना टीका से बल्कि भक्ति से ही। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय। ये भागवत दूसरा कुछ नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के परिवर्तित स्वरूप है। श्री कृष्ण ही भागवत है, दोनों की आकृति प्रकृति स्वरूप सब कुछ एक ही है। भगवान स्वयं स्वप्रकाशी, भगवान को जानने के लिए कोई और उपाय नहीं है। जैसे आप सूर्य को देखना चाहेंगे, चंद्रमा को देखना चाहेंगे, कोई टॉर्च या कोई बिजली की बत्ती लगाकर सूर्य चंद्रमा को देख सकते हैं? नहीं। सूर्य को देखने के लिए सूर्य की ही सहायता चाहिए, उनके आलोक से उनको देख सकते हैं, क्योंकि स्वप्रकाश है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए केवल भगवत कृपा ही आवश्यक है। भगवत कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार असंभव है। लेकिन भागवत ऐसे एक अपूर्व ग्रंथ है जो भगवान को प्रकाशित करता है। ये ज्ञानमय प्रदीप है जिसके द्वारा भागवती स्वप्रकाशित है, भगवानी स्वप्रकाशित है, दोनों ही अनन्य एक दूसरे के ऊपर अपेक्षा करते हैं, इसलिए दोनों ही अभिन्न है। तो इसलिए भगवान को जानना हो तो भागवत के द्वारा, और भागवत को जानना हो तो भगवान के द्वारा या भक्तों के द्वारा। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जो कलिमल कली काल के जितने प्रकार की अज्ञान है, अंधकार है, ये सभी को नाश करने के लिए साक्षात मध्यान्ह सूर्य के समान सभी प्रकार उपाय को बताने के लिए एकमात्र सारांश स्वरूप है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान की वाङ्मय रूप है, इस भागवत को चर्चा करने के लिए जब मुझे आपके नजफगढ़ के कुछ प्रगत भक्त जो मुझे वृंदावन से जानते हैं और ऐसे मुझे नहीं बोले, मैं अनुमान करता हूं उनका मेरे ऊपर कुछ अधिक स्नेह होगा जिसके कारण से हमारे योग्यता का विचार न करते हुए हमको आदेश किए, आग्रह किए कि नजफगढ़ में भी आप एक हफ्ता व्यापी भागवत की चर्चा कीजिए। मैं कभी कभी आया करता हूँ आपका एक कोई एक मंदिर में, कभी कभी नाइट प्रोग्राम में। तो शायद इस कारण से, पता नहीं, कुछ स्नेहाती रख के कारण मुझे आदेश दिए, आग्रह किए मुझे। लेकिन उत्पटंग बात तो यही है कि मैं जैसे नालायक निलज्ज होकर भी उनके आग्रह को मान लिया। मुझे शर्म आना चाहिए था कम से कम, भाई तुम कहा के हो, क्या करने जा रहे हो। लेकिन हम भी ऐसे बेशरम है, उनके आग्रह को स्वीकार भी कर लिया और आपके सामने आकर बैठ भी गया। अब पता नहीं, भागवत ज्ञान की महाग्रंथ है, समुद्र है, उसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति और भगवत तत्व का समिश्रण महासागर है। हम जानते हैं भगवान की प्ररचना में आकर के संपूर्ण सूर्य शक्ति, सारे देवताएं, सारे असुर मिल करके क्षीर सागर को मंथन करने लगे अमृत प्राप्ति करने के लिए। भगवान ने उपाय भी बतला दिया थे, क्षीर सागर को मंथन करेंगे तो मंदराचल कुल आकर के मथानी बनाना होगा, तो सारे समुदाय देवता और असुर मिल करके मंदराचल को उखाड़ डाले, उखाड़ करके उसको उठाएंगे लाएंगे क्या, मंदराचल विशेष इतने विशाल पर्वत को उखाड़ तो नहीं लिए, उखाड़ करके उसको पकड़ नहीं पाए, उसको धारण नहीं कर पाए, मंदराचल इधर गिरा उधर गिरा, वो हल्ला करते उन्हीं के ऊपर मंदराचल गिर पड़ा, लाखों देवता असुर मर गए, पिस गए पहाड़ के नीचे, जो बचे टांग फांग तुड़ा हाहाकार करके चित्कार करके डर के मारे भागे, बोले क्या करें, ये कहां के समुद्र को मंथन करेंगे, मंदरगिरी को लेके मथानी बनाएंगे, हम कैसे कर पाए, कुछ तो मरे जो बचे, चित्कार करके भागे जाके भगवान को प्रार्थना की हमको क्यों ऐसे बुद्धि दिया, हम क्या करें मर जाएंगे सब। तो भगवान बोले कोई बात नहीं मैं आता हूं। तो भगवान आए, अपने एक हाथ के पूरे हाथ नहीं लगाए, पूरे अंगुली भी नहीं, दो अंगुली, ये दोनों अंगुली मध्यमा और अंगुष्ठा में उस मंदराचल को उठा करके अपने गाड़ी में लोड कर दिए। उनका कौन सा गाड़ी था, गरुड़ जी था, उन पर लोड कर दिए उठा करके उसको, और लाखों सुर असुर जो मरे पड़े थे, किसी का टांग सर हाथ पैर सब कटा फटा सब ऐसे पड़े थे, कोई अस्पताल एम्बुलेंस बुलाकर नहीं लिए, केवल अपने शुभ दृष्टिपात से सबको यथावत समृद्ध पूर्ण रूपेण ठीक करके वो लोग बोले हम तुरंत ठीक हो गए। बोले आप लोग भी लेकर नहीं जा, कहाँ तक समुद्र तक जाएंगे, आपको कई महीना लग जाएगा, बदल में जाएंगे, आप भी बैठो, संपूर्ण देवताओं को संपूर्ण असुरों को मंदराचल के साथ अपने गाड़ी के पीछे लोड कर दिया, डिक्की में लोड करके गरुड़ जी में ले आए, ला करके क्षीर सागर में उसको रखे तो सही। बोले अब तो हो गया ना, ला कर दिया, मथानी दे दिया, सागर के तट पर आप ला के उतार दिया, ले भी आया, अब मथानी रस्सी के रूप में वासुकी नाग भी बुला करके दिए, बोले अभी उसको लगा करके मंथन करो, खींचो दोनों तरफ से। हाँ हाँ बहुत थैंक यू सर, अब तो हम कर लेंगे, अब कर लेंगे, आप बहुत बहुत मेहरबानी आपका। आप मंदराचल को उठा करके शक्ति लगा करके समुद्र में डाल दिए, डूब डूब गया पानी में गया। अरे ये समुद्र है, ये थोड़ी आपके पोखर पुष्करणी थोड़ी है, समुद्र है तो कोई डूब गया मंदराचल। अब मरे रोने लगे, फिर अब क्या करें। अब भगवान आकर उठाए, बोले ठीक है हम थोड़ा रस्सी बांध देते हैं, खींचेंगे तब नहीं डूबेगा, रस्सी बांध करके वासुकी नाक को दो साइड से खींचे तो टिकेगा कैसे, मंदराचल नीचे डूब जाता है। फिर प्रार्थना करे, हो नहीं रहा है क्या करें प्लीज, तो भगवान ने कृपा करके उन दोनों की शक्ति कर नहीं पा रहे थे कुछ, सारे देवता सम्मिलित थे, सारे असुर सम्मिलित थे। फिर भगवान को आना पड़ा, एक कछुआ बनकर के इस मंदरगिरी के नीचे रह करके सुधारण करना पड़ा। इस विशाल पर्वत को मंदराचल को भगवान ने कच्छप रूप में अपने पीठ में धारण किया, तब टिक पाया, टिका तो दिए, नीचे नहीं बैठे थे भगवान ने, पानी के आधा से समुद्र के आधा से पीठ में मंदरगिरी को लोड करके खड़े हो के पानी में, नीचे धरती को टच नहीं किए थे। जिस मंदरगिरी को संपूर्ण देव शक्ति दानव शक्ति मिल करके पकड़ नहीं पा रहे थे, उसी को पीठ पर लिए हैं और रगड़ रहे हैं उसको, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, वो घूर्णायमान हो रहा है, भगवान कच्छप देव को लग रहा है कैसा मेरा पीठ में थोड़ा खुजली हो रहा था, कोई धीरे धीरे खुजलापन कर रहा है, थोड़ा जोर से करता तो ठीक लगता, धीरे से कोई खुजलाहट कर रहा है, ऐसे महसूस होता था उनको। लेकिन क्या करे, ऊपर से गिर जाता है, नीचे से इतना सपोर्ट दिए, ऊपर से कुछ नहीं है, इधर से खींचे तो इधर को घूम जा रहा है, इधर से वो मर जाएंगे चिल्ला रहे। तो फिर भगवान को आना पड़ा, एक दूसरे अवतार लिए, लेकर के पहाड़ की पर्वत के ऊपर में सहस्रवाहु हजार हाथ पकड़कर उसे पकड़ रखे, ये पहाड़ को इधर उधर गिर ना जाए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए सहस्रवाहु मूर्ति होकर के ऊपर में बैठे, नीचे कच्छप, ऊपर सहस्रवाहु। अब खींचने के लिए शक्ति भी नहीं, देवताओं के अंदर असुरों के अंदर शक्ति को दे करके स्वयं उनके साथ अजित के रूप में रहे। इस समुद्र मंथन के लीला में भगवान ने अनेक अवतार धारण किए, हर स्थिति में हर समय पर भगवान को निर्भर करते हुए इस समुद्र मंथन कर पाए। तो एक साधारण अमृत जिसको पी करके थोड़ा ज्यादा लंबी आयु भी बच सके, उसी को पाने के लिए इतने कठिन प्रयास और इतने सपोर्ट पाकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। मंदराचल जैसे मेरु पर्वत भी इस समुद्र में डूब गया, कहां चला गया अतल सागर में। तो ये तो साधारण अमृत नहीं है, ये तो केवल लंबी आयु देने वाले नहीं है, आपको ये जो भागवत कथामृत है साक्षात परम पद भगवत पद में स्थापित कर सकता है, ऐसे कथामृत है। और इस कथामृत का रसयुक्त सागर में उसको मंथन करने के लिए, इस कथा को निकालने के लिए, जब क्षीर सागर में मंदराचल भी डूब गया और हम तो एक कीट छार परमाणु के सदृश में नहीं है, इस महाग्रंथ सागर रूपी भागवत कथा सागर अमृत सागर में हम कैसे टिक पाए। एकमात्र भरसा है श्री हरि के, आशा है मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। इस माधव के अहेतु की कृपा पर भरसा करके ये दुस्साहस कर रहा हूं, यद्यपि सच बता रहा हूं, मेरा ना तो भाषा के ज्ञान है, हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं जानता हूं मैंने, ना शास्त्र के ज्ञान है, ना कोई बोलने का अभ्यास है, ना शारीरिक सामर्थ्य है, ना मानसिक सामर्थ्य, हर प्रकार से अयोग्य असमर्थ होते हुए भी आप लोग के आदर के कारण, आज्ञा के बल से और भगवत कृपा को एकमात्र भरोसा करके, आश्रय करके कुछ वक्तव्य कुछ आलोचना करेंगे। इसके लिए जो भी कुछ गलती भूल त्रुटि होगा एडवांस में माफी मांग लेता हूं, बाद में नहीं कहने का, एडवांस में पहले माफी लग देता हूं। अब ऐसे मेरा विश्वास है कि आप लोग में से कुछ भक्त हैं जो हमारे प्रति स्नेह रखते हैं, अगर मैं कुछ गलती मलती इधर उधर बोला भी तो बोलेंगे चलेगा, तो ठीक है। तो समय अभी अपेक्षा नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। जब मुझे बोला गया कि भागवत करो, हम तो कोई भागवत भागवत को किए नहीं थे, मंदिर में इधर उधर कभी थोड़ा क्लास बोल लिया करते थे, मुझे प्रभु जी ने कहे कि भागवत पूरा कर लेंगे, संभव कैसे होगा है? सुखदेव गोस्वामी जितने वक्ता होंगे, परीक्षित महाराज जैसे श्रोता होंगे, बिना खाए बिना पिए सुनते रहेंगे, फिर मूल श्लोक संस्कृत का जिसको बोलने में दांत निकल जाए उसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, हम सुनेंगे समझेंगे कैसे सूत्र रूप में है? जैसे मैंने बताया कि भागवत साक्षात कृष्ण तुल्य है, प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर में अनेक अनेक अर्थ भरा पड़ा है। और विशेष करके हमारे संस्था के आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, जिनका नाम के पहले उपाधि है भक्ति वेदांत, उन्होंने जी भागवत को जब भक्ति वेदांत पूर्ण तात्पर्य दिए आप शायद जानते भी होंगे, प्रभुपाद जी ने इस भागवत को अनुवाद करने के लिए अपने परिणत अवस्था में जब वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में छोटी कमरा के अंदर बैठ करके लिख रहे थे, कई साल लगा करके अपने पूरे समझौता, अपने पूरे ज्ञान को, पूरे अनुभव को लगा करके भागवत की एक ही स्कंद का 3 वॉल्यूम में अनुवाद कर पाए थे। यही एक ही स्कंद था प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जी ने अपने सारी पोटेंशियल डाल रखे हैं, सारे अनुभव को डाल रखे हैं, जो उनका भावना था, इच्छा था, सब प्रकट किए हैं 3 वॉल्यूम में। और श्रीमद भागवत को साक्षात भगवत रूप है, इस भगवत विग्रह के, भगवत विग्रह रूपी भागवत पुराण के, हम जानते हैं भक्त लोग भगवान को जाते हैं तो किसको ध्यान करते हैं, हमेशा भगवान के, कि बड़े लोगों को, कोई बड़े लोग के पास जाओ, कोई महापुरुष के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, तो जो भक्त हैं वो किसके पर ध्यान करेंगे, बोलिए, चरणों पे ध्यान करेंगे। तो ये प्रथम स्कंद है भगवान की पाद पद्म, उनके चरण कमल है। तो मैंने सोचा तो फिर क्या करें, वही चरण वंदना करते हैं फिर। तो प्रथम स्कंद को शुरुआत करने के प्रयास कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में श्री व्यासदेव जी ने इस महाग्रंथ का, जो अपने परिणत अवस्था में उन्होंने किया था, इस महाग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। एक बड़े कृति कार्य का करने से सबसे पहले मंगलाचरण करना होता है। तो गोस्वामी कहते हैं, कविराज गोस्वामी, मंगलाचरण का 3 प्रकार होता है, 3 कार्य होता है मंगलाचरण में। क्या क्या मंगलाचरण है? त्रिविध प्रकार। क्या क्या? नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। ये 3 क्रिया मंगलाचरण में होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के जो 3 मूल श्लोक है, प्रथम 3 श्लोक है, वही 3 ही मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में नमस्कार है, द्वितीय श्लोक में भागवत का कंटेंट, उनका वस्तु निर्देश है, और तीसरा श्लोक में आशीर्वाद है। तो प्रयास करते हैं उनको जानने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्ष्यसि जस्यास्ते हृदयं संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवो वीशो सर्वसिद्धि विधायिनो वंदे परस्परात्मानो परस्पर नीति प्रियो। प्राणी मात्र का एकमात्र कल्याणकारी उपाय, समस्त शास्त्रों का एकमात्र निर्णय एवं मन को प्रसन्न करने का एकमात्र कारण को निर्णय करने के निमित्त प्रेरित होकर के महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन स्वयं उपलब्धि करके जिस वास्तव तथ्य को लिपिबद्ध किए हैं वही श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण का ही स्वयं भागवत्ता प्रतिपादित है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र जस, समग्र श्री, समग्र ज्ञान एवं समग्र वैराग्य श्री कृष्ण में ही विद्यमान है। सर्वाधिक गुणशाली, सर्व भय अपहारक, परम आश्रय एवं असमूर्ध कारुण्यादि गुण से मंडित होने के कारण श्री कृष्ण ही एकमात्र उपास्य है। सर्वलोक के मंगल कारित्व श्री कृष्ण चरित्र में ही है। श्री कृष्ण के अपने स्वभाव, उनके मृदुता, उनके परम उदारता असमर्थ है। सर्वशास्त्रों का सार के रूप में श्री कृष्ण नाम ही है। इसलिए इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितम्, इस श्लोक को अर्थ करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, वो ये नहीं कहते इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितम्, ये ब्रह्म संहिता नामक महापुराण है, बोलते नहीं 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 ऐसा नहीं। फिर क्या, ना इदं भागवतं नाम पुराणम, क्या ये जो भागवत ग्रंथ है वो क्या कौन सा पुराण है, नाम का ही पुराण है, उसमें केवल नाम महिमा ही है। आद्य मध्य प्रांत में केवल नाम का ही विशेषता है, इसलिए कहा इदं भागवतं नाम पुराणम। अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री छंदरूपोसो वेदार्थ परिबृंहितः। संपूर्ण ब्रह्मसूत्र का साक्षात ब्रह्मसूत्र के रचयिता व्यासदेव जी के द्वारा रचना किया हुआ ये भाष्य है। अर्थो अयं ब्रह्मसूत्राणां, ब्रह्मसूत्र का ये भाष्य है, उसका अर्थ है। और भारतार्थ विनिर्णय, श्री महाभारत जिसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित है, उसका वास्तविक अर्थ श्री भागवत। भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपस्सो, वेदमाता गायत्री का असली भाष्य ही भागवत है। वेदार्थं परिबृंहितः, संपूर्ण वैदिक ग्रंथ का, वेद वेदांत का वास्तविक अर्थ भी यही है भागवत। तो इस प्रकार कल हमने शाम को गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आज भागवत है, दोनों ही वैदिक ग्रंथ का सार स्वरूप है। गीता को कल आपने सुने थे, आचार्य लोक ने दूध के रूप में उपमा दिए हैं, कहा गया ना सारे वैदिक ग्रंथ गाय हो, अर्जुन बछड़े हो, कृष्ण ग्वाले दूध दुहने वाले हो, और उससे निकला गया जो अमृत रूपी दूध होगा गीता, गीता दुग्धम अमृतम, गीता दूध है। और भागवत को आगे चलकर आप सुनेंगे क्या कहा गया, ये दूध नहीं, ये फल है। पहले दूध खाएंगे ना, पहले फल खाएंगे, बताइए आप लोग को तो। अरे जब बच्चा पैदा होता है फल खाता है क्या? क्या खाता है? अब बोलना चाहिए, पहले दूध के बिना आगे कुछ खा ही नहीं सकते। आद्य खाद्य है दूध, दूध के बिना आगे पलेंगे पोसेंगे किसी बढ़ेंगे कैसे? दूध खाना ही पड़ेगा जन्म से ही, तो पहले गीता को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भागवत के पास आ नहीं सकते। दूध पीना पड़ेगा ना नहीं तो फल हजम कैसे करेंगे ये तो फल के रस है, परिपक्व फल रस, पका हुआ फल रस है। तो इसलिए जो दुग्ध पान कर चुके हैं, इतने शक्ति तो धारण कर चुके हैं, तो फिर इस फल आसाधन करेंगे। तो श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनके प्रतिपादित शास्त्र होने के कारण इस महान ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवतम है, किंग इसमें भगवत्ता की प्रतिपादित किया गया है। भक्ति योग के द्वारा ही मन प्रसन्न होता है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गुण प्रवर्तन के शास्त्र को भागवत शास्त्र कहा गया, जो भक्ति शास्त्र भी है। इसी में वास्तव वस्तु का वर्णन किया गया है, जो वास्तव वस्तु है उनका अंश है जीव, हम लोग सब उनके अंश है, इस वस्तु के अंश हैं। इस वस्तु के शक्ति है माया, इस वस्तु के कार्य है इस जगत। इस प्रकार समस्त सारभूत वस्तु ही वही अद्वैय ज्ञान स्वरूप श्री परम पुरुष भगवान है। इस वस्तु का त्रिविध प्रकाश है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। वस्तु तो पूर्ण शक्तिमान है, लेकिन उपासक के योग्यता की, जो जानने वाला उसके योग्यता के अनुसार वो जान पाता है, उनके योग्यता के अनुसार वो निर्विशेष दृष्टि से ब्रह्म रूप में देखता है। थोड़ा नजदीक जाकर के योगी के रूप में परमात्मा रूप से देखता है, और भक्त के रूप में भगवान के रूप में देखता है। इस प्रकार के दृष्टि भेद है। इसमें कपट रहित परम धर्म का वर्णन है, वो परम धर्म का वर्णन अन्यत्र नहीं है। जो असली धर्म है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जितने प्रकार के धर्म है उसमें जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि जो कामना है वांछा है वो छल धर्म है, कैतव धर्म है। और इन तीन छल धर्म से जो मुख्य कामना है, तारा मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, इस तीन इच्छा के भोगने की इच्छा, छूटने की इच्छा, मुख्य माने छूट जाए, सिद्धि की इच्छा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, जो तीन प्रकार की इच्छा है, उन इच्छाओं में से ये तीनों तो चीटिंग है ही है, अपधर्म है, छल धर्म है। इन तीनों में से जो मुख्य की कामना, ओह बहुत हो गया, कब छूटूं यहां से, कब निकलूं, ये जो मुख्य की कामना, उसको गोस्वामी पाद कहते हैं तारा मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, जहां हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। इस मुक्ति के कामना के कारण, मुक्ति की इच्छा के कारण आपके अंदर थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति के था, वो अंतर्धान हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपके साधन भजन नाकामी हो जाएगा ना। तो इसी को यहां कैतव कपट कहा गया, कपट धर्म। जिस धर्म के आचरण से, धर्म की आड़ पर हम लोग मुख्य चाहते हैं, जिस धर्म की आड़ पर हम भोग चाहते हैं, जिस धर्म की आड़ पर हम सिद्धि कामना करते हैं, ये सब छल धर्म है, कपट है। तो यही एक ही शास्त्र है जिसमें निष्कपट धर्म का वर्णन होता है, कपट रहित, इसमें कोई छलना नहीं है। ऐसे कपट रहित धर्म का वर्णन इस शास्त्र में है। जो प्राणी मात्र का शुभाकांक्षी सारे जीव के ऊपर दया करने वाले समस्त सज्जनगण इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुशीलन का अधिकारी हैं। अगर आपके मन में जीवों के प्रति द्वेष हो, ईर्षा हो, तो फिर भागवत मत पढ़िए। आपने निर्मत्सराणां मत्सरविहीन लोगों इसके अधिकारी निर्णय करते हैं, ये भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है। श्रीमद् भागवत श्रवण में श्रवण करने का इच्छा मात्र से ही ये ऐसे कि श्री कृष्ण आकर्षणी महाविद्या है। भागवत सुनने का इच्छा हृदय में प्रकट हो, अभी श्रवण नहीं किए, श्रद्धादि हुआ नहीं श्रवण में, सुनने का इच्छा किए मैं जाकर सुनूंगा, ये श्रवण इच्छा करने मात्र से भगवान सत्य ही हृदय में बंध जाते हैं। भगवान को हृदय में अवरुद्ध करने वाला महाविद्यारूपी शास्त्र केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस महाशक्तिशाली श्रीमद् भागवत के जो शुरुआत आप लोग करना चाहते हैं, तो हम उसको यथाशक्ति भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी ने भागवत में से एक श्लोक को बड़े जोर देकर कहते थे कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। आपके हृदय में, हमारे हृदय में जो अभद्रता है, जो अनर्थ है, जो अनावश्यक वस्तु, जो कचड़ा है, उसको अगर आप साफ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो क्या उपाय है? नित्य प्रति भागवत की सेवा करो। नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। निष्ठा प्रभाव से भक्ति दृढ़ भाव से आपके हृदय में स्थिति हो जाएगा अगर नित्य प्रति आप भागवत के इसी उत्तम श्लोक को आस्वादन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में ही भागवत को आस्वादन करने का पद्धति बताया गया कि क्या, कि नित्य आस्वाद्य, डेली डेली भागवत को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हम ये 7 दिन का क्यों बनाते हैं? भागवत में 7 दिन का नहीं कहा गया, भागवत में तो नित्यम भागवत सेवा कहा गया। हाँ, ये 7 दिन का बात तो तभी उठता है क्योंकि भागवत के जो प्रथम श्रोता थे चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज एक समय में उन्होंने शिकार करने गए थे मृगया में। ऐसा हुआ घूमते घूमते उन्होंने थक गए, बहुत प्यास लगा, पानी को ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक ऋषि आश्रम में पहुंचे। वो समीक ऋषि के आश्रम था, इस ऋषि समाधिस्थ थे, तो वहां उनको जल नहीं मिला, तो उन्होंने उनके प्रति थोड़ा क्रुद्ध दिखाए, तो जिस कुछ कारण से उनको अभिशाप प्राप्त हुआ, श्रृंगी ने, उनके पुत्र ने उनको अभिशाप दिया कि 7 दिन में, 7वां दिन में आपको तक्षक दंशन करे, आपका मृत्यु हो जाए। ये बात उनको पता था नहीं, परीक्षित महाराज को पता नहीं था, उन्होंने आ गए, मरे हुए सांप डाल करके उसके ऊपर आ गए, जब समिक ऋषि को यह बात पता चला, इसका विवरण आगे आएगा भागवत में, तब उन्होंने खबर भेजे परीक्षित महाराज के पास कि उनको सूचना तो दे दो कि सातवां दिन में उनका मृत्यु होने वाला है। तो चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जब उनको मैसेज मिला कि आज से लेकर के सेवंथ डे सातवां दिन उनका मृत्यु सुनिश्चित हो चुका है, ब्रह्म साप लग चुका है, तो उन्होंने कुछ गुस्सा नहीं किए, कुछ दुखी नहीं हुए, बहुत प्रसन्नचित हो गए, बहुत खुश हो गए। बोले वाह, ठाकुर जी का कैसे कृपा है हमारा ऊपर। तो उन्होंने तुरंत कपड़ा वपड़ा उतारा और तुरंत चल पड़े। थोड़ी दूर में गंगा जी थी, गंगा किनारे प्राय उपवेशन, अभी पानी नहीं पिए थे, प्यास में तड़प रहे थे, अब मरते दम तक अन्न जल त्याग करके अनशन व्रत लेकर बैठ गए गंगा के सहारे। तो उनका पास में उनके जीवन के अवधि केवल मात्र 7 दिन बचा हुआ था, और था ही नहीं ज्यादा, उनके पास टाइम कितना था, ओनली 7 दिन था, उसके आगे कुछ उनका मृत्यु होना था, 7 दिन के आगे उनका परमायु नहीं था, परमायु केवल 7 दिन था, तो इसलिए उनको 7 दिन तक कथा सुनना पड़ा, क्योंकि आगे तो रहेंगे नहीं, मर जाएंगे। हम लोग का तो ऐसा नहीं है ना, हम तो आशा करते हैं बहुत कुछ, है ना, नहीं तो हम भी वही 7 दिन रख करके बाकी दिन अपने मस्ती करेंगे, नहीं तो हम लोग के लिए कम से कम नित्य करना चाहिए, है ना, नहीं। ऐसे देखा जाए 7 दिन तो सभी के लिए है। जो आज सोमवार है, आप मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, यही 7 ही दिन एक सप्ताह में होता है, तो हमारा जन्म भी इसी 7 दिन के अंदर ही हुआ था, एक हफ्ता के अंदर, मृत्यु भी इस 7 दिन के अंदर ही होगा, इसी 7 जो बार है, वीक डेज है, उसी के अंदर भी तो किसी बार में होगा ना, चाहे सोमवार चाहे रविवार चाहे मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनि, किसी इसी में दिन में तो होगा, ये 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन होता है क्या? हमारा परमायु भी इसी 7वें दिन के अंदर ही है, लेकिन हम उसको सोचते नहीं है, बोलते हैं नहीं हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा जिएंगे, 7 दिन तक सुन ले, चलो ये भी बहुत बड़ी बात है, 7 दिन तक भी समय पर आकर के समय पर सुनकर जाए तब भी बड़ी बात है। तो इसलिए सब नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत पढ़ने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी ने प्रत्येक श्लोक को एक एक दिन आस्वादन करने के लिए व्यवस्था हमारे संस्था में रख गए हैं, और उन्होंने जो भक्तिवेदांत तात्पर्य लिखे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर, विशेष करके प्रथम स्कंद में बहुत लंबे लंबे तात्पर्य है, विशेष करके जो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्लोक के ऊपर तो किताब निकल जाएगा, तो हमारे पास समय तो बहुत कम है, ऐसे ही हम लोग अल्पायु हैं, इनमें से समय भी अवधि बहुत कम है, तो उसमें से यथाशक्ति प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद के जो प्रथम अध्याय है उससे लगभग 19 अध्याय है। प्रथम अध्याय के नाम प्रभुपाद जी ने रखे हैं मुनियों की जिज्ञासा, नमस्यारण्य में एकत्रित हजारों संख्या में जो मुनि ऋषि थे उनका मन में एक जिज्ञासा हुआ, एक नहीं 6 प्रश्न था उनके अंदर, इस 6 प्रश्न इसी प्रथम अध्याय में किया गया है। तो इसी जिज्ञासा रूपी प्रथम अध्याय के मंगलाचरण रूपी प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हुए श्री व्यासदेव शुरुआत करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माधस्य जतुन्नयादितिरतश्चार्थ सौभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवयो मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो बारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं धीमहि। इसमें सब कुछ आ गया बोलते हैं। विश्व सर्ग विसर्गस्य भागवत महापुराण के जो दस लक्षण है, सारे दस के लक्षण इसके अंदर है, इस श्लोक में। कई कई आचार्य तो यहां करते हैं जो शुरुआत है जन्म जन्मादस्य, उसको बोलते जन्म आदिस्य, आदि पुरुष तो भगवान कृष्ण है, उनके जन्म लीला भी उसी में है। जन्म आदिस्य पूरे दसम स्कंद भागवती भी उसके अंदर, पूरी भागवत इसी में। तो उसके प्रभुपाद जी के जो अनुवाद है, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी परम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता भी उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहित हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थाई रूप में प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये है अवास्तविक। अतः मैं उन श्री भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूप से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं, क्योंकि वो ही परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो परम सत्य कौन है? सबसे प्रथम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो परम सत्य वो कोई नहीं है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव ही, वही परम सत्य परम भगवान है, वही व्यक्ति है। इसलिए सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। वो कैसा है? ना जन्मादस्य जतन्नयादि तरतः सार्थ स्वभिज्ञ स्वराट, यही वही अभिज्ञ है। किस चीज का अभिज्ञ? ना जन्मादस्य, जो कुछ संपूर्ण सृष्टि में सृष्ट हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है, सृष्टि होने के बाद कुछ समय टिकता है, फिर स्खलित होता है, फिर संहार हो जाता है, इसको आदि शब्द से लिया गया। जन्म आदि से, जन्म मतलब सृष्टि, स्थिति और प्रलय, आदि शब्द से तीन काम होता है, जन्म से लेकर के प्रलय पर्यंत। इस सब कुछ का जत अन्नया इतरतः, अन्य रूप में हो, व्यतिरेक रूप में हो, उसके अलावा और कुछ भी जो हो, मतलब जो आपको सच्चाई के रूप में दिखना दिखाई पड़े, वो भी उसके कारण, उसके स्थिति, उसके प्रलय, और जो आपको असत्य रूप में दिखाई पड़े, जो को नहीं दिखाई पड़े, वो भी उनके स्थिति और उनके सृष्टि और प्रलय, वो भी। इतर वस्तु का और पर वस्तु का, संपूर्ण वस्तु का जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ शब्द का अर्थ है परम ज्ञानी, जिनको हर चीज का पूरा पूरा ज्ञान हो। जैसे हम लोग ये देह हैं, ये शरीर है, इस शरीर का नख से लेकर के सिर पर्यंत हर एक पुर्जे पुर्जे का ज्ञान हमको होता है। मैं आपके ओर मुंह करके बैठा हूं, पीछे अगर एक चींटी आकर के यहां थोड़ा काटने लगा, मच्छर बैठा, तो मुंह तो आपकी ओर है लेकिन हाथ आराम से चला जाएगा पीछे, टू दी पॉइंट एक बार प्लेस में जा करके अपना काम करके आएगा, क्योंकि हमको ज्ञान है। इस शरीर का पूर्ण ज्ञान, इस शरीरी जो हम देही है, इस देह का जो मालिक देही को, इस देह का पूर्ण ज्ञान है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने कहते हैं, एक आर्किटेक्ट जो चीफ इंजीनियर हो, कोई विशाल प्रकल्प हो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हजारों हजारों शिल्पी काम करते हैं, हजारों लेबर काम करते हैं, विशाल प्रोजेक्ट प्रकल्प है, उनके ऊपर जी दी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होगा, यद्यपि वो स्वयं आकर के कोई काम नहीं करता है, प्रैक्टिकली फील्ड में कभी आता है आधे घंटे में चला जाता है, कभी देखता भी नहीं, कभी आता भी नहीं, और कहीं बैठता है, वो स्टेट दूसरे कोई स्टेट में बैठता है, लेकिन केवल हाथ में कि उनका एक छोटे से कंप्यूटर में, लेफ्ट में एक उनका मैप लिए बैठा होगा, और उनको आपने पूछो, वो लेबर जो दिन रात 18 घंटा वहां श्रम करता है, उनको पता नहीं होगा कि पानी कहां से आ रहा है, पानी में कितना खारा खारा गुण है, कौन सा सीमेंट है, किस कंपनी से आया, क्या प्रकल्प के, कुछ नहीं पता होगा। जो इंजीनियर जो कंट्रैक्टर, उनको पता नहीं होगा, वो कई हजार किलोमीटर दूर में बैठे बैठे पूरा पूरा बता रखता है, सब बता सकता है ना। नहीं, जिस प्रोजेक्ट का मेन इंजीनियर होगा सारे पता रहता है, आप उसको बोलो नहीं, इसे नहीं मुझे पता है, वो उसका अंदर तो चार सरिया है, आप किसे बोलते हैं तीन है, वो बिल्कुल बता देगा, क्यों आया नहीं एक दिन ही उन्होंने, क्योंकि उनके हाथ में मॉडल के साथ वो प्लानिंग उसके हाथ पर अप्रूव उन्होंने किया है, उनके डायरेक्शन में काम होता है, प्रत्यक्ष नहीं है और कहीं बैठता है, लेकिन पूरे पुर्जे पुर्जे के ज्ञान उसके रहता है। ठीक है, इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के दी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भगवान वासुदेव है। हम कहते हैं सृजक तो ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा को भी वो सृजन करते हैं, वो इंजीनियर को अपॉइंटमेंट उन्होंने किए हैं। इस श्लोक में कहा गया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो, ब्रह्मा है आदि कवि, मतलब आदि मतलब सृष्टि के प्रथम सृष्ट जीव, दी फर्स्ट एंटिटी, क्रिएशन का सर्वप्रथम प्राणी है ब्रह्मा, उनको भी उन्होंने सृष्टि किए बिना पत्नी की सहायता से, जबकि लक्ष्मी जी मधुर थी, लेकिन उनको भी पता नहीं चली बेटा कब पैदा हो गया। हाँ, भगवान सोए थे, भगवान सोए सोए उनके पत्नी भी उनकी पद संवाहन कर रही थी, पत्नी को भी पता नहीं चला कि बेटा कब पैदा हो गया। ना पत्नी की पता चला, ना बेटा को पता चला। जब साक्षात भगवान के अंग संग करके उनके पत्नी उतने पुत्र को नहीं पता चल पाया कारण के बारे में, हम कौन से गली के कुत्ते हैं हमको पता चल जाए, कैसे सांस करेंगे, नहीं पता चलेगा। और फिर ब्रह्मा को उन्हें अपॉइंटमेंट उनके द्वारा कराएंगे ना सृष्टि सृजन, तो उनको इंजीनियरिंग स्कूल में पहले केजी से लेकर पढ़ाए इंग्लिश मीडियम में, फिर वो क्या जेई एंट्रेंस दिला करके फिर आईआईटी में भर्ती कराए इंजीनियर स्कूल में, फिर इंजीनियर बना, फिर अपॉइंटमेंट कराए कोई ब्रेक दे करके, तब पोस्ट में आया। अब बोले कुछ नहीं करना पड़ा, कोई दूसरा प्राणी ही नहीं था। कई लोग बोलते हो कैसे सकता, जब ब्रह्मा थे तब तो पूरी ब्रह्मांड में वो कोई व्यक्ति कोई प्राणी ही नहीं था, उनको पढ़ाया कौन, वो बने कैसे इंजीनियर, सृष्टि किए कैसे, बड़ी आश्चर्य बात है। इस श्लोक में उसका उत्तर देते हैं व्यासदेव, कहते हैं कि और जो पुरुष हैं, जो परम सत्य हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, वो सृष्टि के प्रथम जीव आदि कवि ब्रह्मा, उनके हृदय में तेने ब्रह्म आदि कवयो, उनका हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में डायरेक्ट, नहीं है कि उनको किताब खर्चा लेकर के पढ़ाए, याद करो, मेमोरी करो, कुछ नहीं, कि सीधा डायरेक्ट इनपुट लोड कर दिए, चिप्स में लिए होंगे, सीधा डाउनलोड कर दिए, सीधा हार्ड डिस्क उनके हृदय में डाउनलोड किए। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो, ब्रह्मा जी के हृदय में सीधा सारे ज्ञान इनपुट कर दिए एक सेकंड में। लो, इंजीनियर बन गया दूसरे सेकंड में, कोई सोच सकता है इस बात को? सबसे पहले यही आश्चर्य से सृष्टि शुरू हुआ भगवान ने किए, ब्रह्मा को एक मिनट में इंजीनियर बना दिया। इतने सारे जंत्री कौशल कैसे मिला? बोले सीधा डाउनलोड कर दिए बुद्धि उनके अंदर, हृदय में सीधा डाउनलोड किए। आजकल तो आपको कितने साल लगता है पढ़ते पढ़ते, तब भी काम नहीं बनता, ये उनकी क्षमता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो, जो ब्रह्मा जी को एक मिनट में सीधा डाउनलोड करके हृदय में ज्ञानी बना सकते हैं, चतुर्मुख बना सकते हैं, वो वास्तविक अभिज्ञ है। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का हर पुर्जे पुर्जे के पूर्ण ज्ञान उनको है। कोई भी प्राणी चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, सभी तो कुछ ना कुछ सृजन करते हैं, निर्माण कर, चींटी भी अपना काम कर रहा है, ब्रह्मा भी अपना काम कर रहा है, हम लोग भी बीच में अपना काम सब कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए हम सोचते हैं हम ही तो करता है, हमारे बिना और किसी को थोड़ी पता है, मैं जो कर रहा हूं और किसी को पता नहीं, मैं ही कर रहा हूं। लेकिन हम जैसे महामूर्ख है, तुझे कुछ नहीं पता है, अद्यो प्रांत मध्य में सब कुछ पता रहता है उनको, इसलिए उनका नाम है अभिज्ञ। पूर्ण ज्ञान रखते हो पूरे ब्रह्मांड के, संपूर्ण जीव के, संपूर्ण प्राणी के, एक एक धूलि कणा से लेकर के वायुमंडल, अग्निमंडल, संपूर्ण तारा ग्रह, ग्रह मंडल, सूर्य तारा का पर्यंत, पूरे सभी का टीट बिट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज उनके पास मौजूद है, इसलिए उनका नाम है अभिज्ञ। केवल अभिज्ञ नहीं, वो है स्वराट। स्वराट माने पूर्ण स्वतंत्र, वही परम सत्य परम भगवान ही केवल पूर्ण स्वतंत्र है, बाकी उन्हीं को छोड़ करके सारे देवाधि लेव से लेकर के हमारे पर्यंत सब परतंत्र है, सब परतंत्र है। हम लोग को शर्म आना चाहिए, कभी कभी हम भी बोलते हैं हम भगवान बन जाएंगे, कोई बन भी डालते हैं, कितने परतंत्र है हम लोग। भगवान का एक गुण है स्वराट, स्वतंत्र है, किसी के वश में नहीं है। हम लोग को दूसरे के क्या कहें, अभी पिशाब लगा तो हमारा बस नहीं चलेगा, भागना पड़ेगा बाथरूम ढूंढने के लिए कहीं, चाहे भगवान बने। मैं टॉयलेट पिशाब को थोड़ी रोक सकता, हमारे जैसे बनी बनाए भगवान नहीं, तो कैसे स्वतंत्र है भाई, किसी माने में स्वतंत्र है, किस माने में स्वतंत्र है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं तो कम से कम मैं तो अपने घर का नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने शरीर का तो मालिक हूं, है ना? नहीं, अच्छा हाँ है, मानो, मान लो तू अपना शरीर का मालिक हो, कम से कम तो मेरे इच्छा से मेरा शरीर काम करता है, मेरे मन किया तो बैठा, मन किया तो लेटूंगा, मन किया हाथ ऊपर करूंगा, मन किया हाथ नीचे करूंगा, मन किया आंख ही बंद करूं, मन किया आंख खोलूं, मेरा मन से मेरा शरीर चलता है, मैं मालिक हूं, जैसे मैं इच्छा करूं ऐसे मेरा शरीर काम करेगा, आई एम द ओनर, मैं मालिक हूं मेरे शरीर का, एटलीस्ट इतना तो हूं, इतने तो मुझे स्वराट मानना पड़ेगा, इतने मालिक मना मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपकी इच्छा से आपका शरीर काम करता है, आपके जो मर्जी से इसी तरह शरीर कराओ। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अगर आप अपने शरीर के सचमुच मालिक मानते हो भी, तो आप अपने शरीर को, शरीर के अंग को, अपने बाल को पहले ऑर्डर दो, ए मेरे बाल हमेशा काला रहना, कभी सफेद नहीं पड़ना, तो आपका आदेश मानेगा? ये बाल भी आपके ऑर्डर को नहीं मानता है तो क्या मालिक है रे? बाल भी आपके ऑर्डर को खातिर नहीं कर रहा, वो बोलता तू मुझे कौन ऑर्डर देना, मैं तो सफेद बन जाऊंगा, अरे तू क्या मालिक है, ये भी तेरा बात नहीं मानते। उसके नीचे आम को बोले हमेशा ताजा रहना, देखते रहना, नंबर बदलता रहता, क्या मालिक है। उसके नीचे दांत, मैं नारियल खाना बड़ा पसंद करता, मूंगफली लड्डू खाऊंगा, क्या मालिक है। निकल जाएंगे एक एक करके सारे, तो मालिक है। किस माने का मालिक हो तुमने, शरीर का भी कोरा वैसर भी नहीं है। हम बोलते हम मालिक है, नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, हर गीज परतंत्र है, हर स्टेप में हर क्षण में पद पद में भी पदग्रस्त है, परतंत्र है। अगर कोई स्वतंत्र एक हो व्यक्ति और कोई नहीं है, वही परम सत्य भगवान वासुदेव ही है, श्री कृष्ण है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य, वही ईश्वर है, वही अभिज्ञ है, वही स्वराट है। तेजो वायु मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, इनके वैचित्र्यपर्ण सृष्टि वो कर दिए हैं, बड़े से बड़े अधिनायक देवाधिदेव ब्रह्मा रुद्र पर्यंत मोहित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको। और तो और क्या कहूं, साक्षात अभिन्न भगवत स्वरूप श्री बलदेव श्री बलराम ब्रज लीला में ऐसे एक लीला हुआ जिसमें एक साल तक भगवान बलराम को भी पता नहीं चला कि भाई ये हो क्या रहा है। एक साल के बाद हम बोलते व्हाट इज इट, अरे अब कैसे पता चला, वो भी पता नहीं चलता। एक दिन उन्होंने उनके साथ में डेली जाता था गाय चराने के लिए, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ चलते थे, गाय चराते थे, फिर भी पल्ले नहीं पड़ता था। एक दिन एक साल के बाद देखे कि गोवर्धन पर्वत में गाय चर रहे हैं और भी ग्वाला लोग, क्योंकि ये तो बछड़ा बच्चा थे, बछड़ा चराते थे छोटे छोटे बालक, बड़े बड़े गोप जो है गाय चराते थे गोवर्धन पर्वत पर, बड़े बड़े गोप गाय चराते थे और छोटे छोटे बालक बछड़ा चराते थे। वो बछड़ा चलाते चलाते गोवर्धन की तलहटी की तरफ आ गए, वो पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े गोप गाय चराते रहते, और वो जो गाय थे उनका ये जो बछड़ा अभी चराते हैं वो तो उनका उनके बाद में और दो बछड़ा हो चुका है, समझ रहे ना। मतलब एक गाय जो बछड़ा पैदा किया उसके प्रति बहुत ममता स्नेह रहता है गाय का, उसके बाद में बछड़ा बड़ा हो जाए फिर दूसरा बछड़ा पैदा करे फिर पुराना बछड़ा के प्रति प्रेम करेगा तो वो तो सर्वसाधारण हो जाएगा, वो पब्लिक हो जाएगा। फिर दूसरा जो बछड़ा पैदा उनके प्रति, इसे वो जो बछड़ा वो भगवान चराते हैं उसके बाद में दो बछड़ा और वो गायों ने सब प्रसव कर चुके हैं, मतलब ये बछड़ा के प्रति प्रेम साधारण होना नहीं चाहिए, स्नेह नहीं होना चाहिए। लेकिन वो देख रहे हैं बलराम जी ने देखे कि वो गाय उनके जो तीन साल पहले का बछड़ा था, मतलब एक साल में पहले का जो बछड़ा थे उसके पहले जो बछड़े हुए थे, इन बछड़ा को देख करके पर्वत की चोटी से इतने वेग से दौड़ रहे हैं द्रुत गति से, कोई रास्ता घाट पत्थर नाल कांटा कीचड़ कोई देखने दौड़ते आ रहे पागल की तरह, इतने स्नेहातिरेक इतने स्नेह ममता के अतिरेक दौड़ते आ रहे हैं उनके पास। अरे बड़े बड़े बछड़ा अभी नए नए बछड़ा उनके प्रति आपका स्नेह ममता कहां गया, ये पुराने बछड़े के प्रति क्यों भाग रहे दौड़ रहे। आश्चर्य होकर देखने लगे, ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए, हम ग्वाले हैं गाय चराने में गाय के सारे क्रिया मुद्रा जानते हैं, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं गाय अपने नए बछड़ा के प्रति स्नेह ममता को छोड़ कर कि पुराना बछड़ा के प्रति भागे दौड़ जा रहे हैं। और वो गोप लोग तो हद हो गया उनका, रोके रोके मार पीटे कितने प्रयास किए रोक नहीं पाए, किसी का टांग टूटा किसी का क्या हुआ फिर भी पागल में दौड़ करके आए गाय लोग बछड़ा के पास। और गोप लोग तो गुस्सा हो गए, ये बछड़े के ऊपर ये बालकों के ऊपर क्यों बछड़ा यहां लेकर के आया, इतना पास में क्यों ले आया? गुस्सा हो रहे थे, गाय को मार पीट करके करने पे बोले बच्चे को पीटेंगे, ये बदमाश क्यों लेकर आए यहां? बच्चों के ऊपर गुस्सा होकर के लाठी लेकर दौड़े, जैसे बच्चों को देखे खत्म, सारे गुस्सा सारे को पानी फिर गया, खत्म हो गया। यहां आकर के बिल्कुल स्नेह से चुमने लगे उनको, बराबर हो क्या रहा है ये सब चीज, एक मिनट में कहां खत्म हो गया सारे कोप प्रताप उनका। बाकी तो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि साक्षात भगवत रूप थे। बलराम जी ने पूछे, बोले कन्हैया ये क्या हो रहा है सर, रहस्य क्या है? दाऊ भैया कुछ तो है, यही है ना, है वही है, आप जो सोच रहे हैं वही है। अच्छा ना, अरे मुझे एक साल तक ना क्या करूं इस क्विज में। साक्षात बलराम जी को पता नहीं चला, एक साल के बाद पता चला कि ये जितने बछड़े थे सारे कन्हैया थे, जितने ग्वाल बाल थे सारे वही थे। इनको लगा एक साल, फिर देखे बिना नहीं समझ पाए, और हम समझने के लिए प्रयास चाहेंगे कर पाएंगे? केवल कोरा दुस्साहस नहीं होगा। ओ हे भगवान, जब ओ मोहित हो गए, ये छोटे मोटे देवता और मनुष्य की बात ही कहां उठता है? मुनि ऋषि मंडली सब मोहित है, सब फंसे हुए हैं, कोई नहीं जान पाते। यत्र त्रिसर्गो मृषा, इस सृष्टि में जो मायारूपी सृष्टि है जिसमें त्रिगुणात्मक तीन गुण है, इसी तीन गुण में ऐसे उत्प्रत मिलन होकर के सृष्टि करते हैं। आप इधर से देखो तो वो दिखता है, दूसरे में देखो तो वो दिखता है। तेजो वारी मृदा जथा विनिमयो, तेज मतलब लाइट। कभी कभी आप कोई बहुत बड़े खुला जगह पर चलेंगे, गर्मी के समय में प्रचंड धूप होता होगा, तो धूप में सूर्य रश्मि के कारण आपको एक प्रकार मरीचिका दिखे, कब देखे आप लोगों ने, जिसे दिखाई पड़ेगा कि बिल्कुल नीले रंग के पानी नदी बह रहा है, सुंदर जल नदी प्रवाह हो रहा है, लेकिन नदी थोड़ी है उसमें, ये तो लाइट है, तेज है। लाइट में पानी के भ्रम, आग में पानी के भ्रम, और पानी में कभी कभी शीशा होता ना, कांच, पानी में देखने नहीं कांच है क्या, शीशा के भ्रम, कभी कभी शीशा में जल के भ्रम, एक को दूसरे के धर्म आरोपित हो जाता है। अब मालूम है ना, महाभारत में जब उन्होंने यज्ञ संपूर्ण हुआ, युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ, उसमें उनके भैया लोग जो मतलब धृतराष्ट्र एंड कंपनी गए थे, उनके सारे सपरिवार, दुर्योधन भी गया था, जिस दिन पूर्णाहुति हो गया सब कुछ हो गया, तो बोले कि आपके महल थोड़ा देख कर आएंगे, बोले इन्वाइट के, बोले चलो आज प्रीति भोज है, आज फिस्ट है, भंडारा, सबको बुलाए, लेकिन ये बोले थे कि हम साथ में ले जाएंगे भवन दिखाएंगे, जो मय दानव ने इंद्रप्रस्थ रूपी जो भवन निर्माण किया था, इस भवन को आज सबको घुमाकर दिखाएंगे कैसा भवन है। तो लेकिन दुर्योधन थोड़ा एक्स्ट्रा चालक था ना, वो अपने पार्टी कर्ण और शकुनी और दुशासन को साथ में लिया, बोलो चलो हम पहले घूम कर आ जाते हैं, बाद में देखा जाएगा, वो आएंगे लेकर जाएंगे, हम थोड़ी एरे गेरे थोड़ी है, हम क्या देख नहीं सकते, मेरा हस्तिनापुर भवन है इतना विशाल, राजभवन है, ये कौन सा बनाया होगा, मैं नहीं। तो ऐसे वो अपने पार्टी लेकर चल पड़े, पार्टी में कौन कौन थे पता है यार सब, है ना, उनके ग्रुप थे, वो गए एडवांस टाइम दिए थे, हम सब आएंगे गाइड के साथ ले जाएंगे दिखाने के लिए, बोले हम एक्स्ट्रा चालक पहले निकल पड़े, निकल करके और गए, वो लोग तो अभी आए नहीं थे गाइड को दिखाने, जा करके जो भवन का इंद्रप्रस्थ महल का प्रवेश किए, प्रवेश करते ही लगा अरे बड़े गजब बनाए, एंट्रेंस में जलाशय है, हैं? जैसे भवन के अंदर गेटवे में प्रवेश किए, जो भवन था उसके घर के अंदर प्रवेश किए, उनको दिखाई पड़ा विशाल जलाशय है, स्विमिंग पूल बनाए शायद कि क्या, इतने बड़े जलाशय है, बिल्कुल स्निग्ध फर्स्ट क्लास जल भरा हुआ है, खिल रहा है जल, और ऊपर में सब अंदर महल मनो रानी महल है, वहां सब रानी लोग आते जाते करेंगे, फिस्ट देना है ना, रसोई में बिजी हैं सब, देख रहे हैं इधर उधर जाते आते रहते हैं, देख रहे हैं कि वो राजपुरुष लोग कुछ आए हैं, चलो आने तो हम अपना काम कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर दुर्योधन देखा कि बोला पानी है, लेकिन क्या करूं, पूरा पानी भरा, मुझे जाना है, पूरा देख कर आएंगे फिर कितना पानी है पता नहीं, कपड़ा गिला ना हो जाए, बहुत कॉस्टली क्लथ पहना हुआ था, घर में गया था ना यज्ञ में तो बहुत कॉस्टली शूटिंग शाटिंग पहना हुआ था, तो गिला ना हो जाए तो उठाया कपड़ा, जाऊंगा अपने से पता नहीं ज्यादा पानी लगता है, तो पूरा यहां तक पूरा कमर तक, कमर से ऊपर तक कपड़ा उठाया, सारे को सारे पार्टी उनका सारे मित्र वर सारे कमर तक कपड़ा उठा करके पैर डाले, धीरे से पानी है ना फिसल ना जाए, धीरे से पैर रख रहे हैं, लेकिन ये पानी था ही नहीं ये तो पानी जैसा ऐसे कुछ द्रव्य बनाए थे, वो ऐसे पानी जैसा आभास हो रहा था, और ऐसे धीरे से कपड़ा उठाकर अर्ध नग्न होकर के उसे प्रवेश कर रहे थे, और उसको धीरे से पैर डाल रहे थे, पड़ गए उसमें, उसको देख करके ऊपर रानी महल में ठिठा करके हंसने लगे, बोले हाय हाय अंधे हो गए क्या ये लोग, बाप तो अंधे यो भी अंधे, घोर अपमान, अपमानित होना चाहिए भाई, देखो स्थल भाग में जहां पानी है ही नहीं और पूरे अर्धनग्न होकर के बड़े होशियार से पैर डाल रहे हैं कोई नहीं हंसेगा बताओ, वो घरवाली है तो देखेंगे, बोले ये क्या हो गया उनका, वहां तक गए और उसके आगे में सही में स्विमिंग पूल था, पानी था सचमुच, वहां गए बोले एक बार भूल हुआ कान पकड़े दोबारा तो भूल नहीं करे, बिल्कुल फिट फाट, कोई कपड़ा नहीं उठाया, सीधा नॉर्मल ड्रेस में ढड़ाम भस्म गिर गए पानी में, गिर ऊपर से तो हंसी हंसी जा रहे हैं, बोले गए और आगे भवन दर्शन क्या करेंगे, का नाक कट गया वहीं से आए वापस, वहीं से महाभारत शुरू करवा दिया आकर के। तो ऐसे ही सभी का भ्रम होता है, तेजो बारी मृदा, जल तेज और मिट्टी, भगवान ने ऐसे कभी कभी सृष्टि करते बनाते, हम शीशे को देख करके पानी समझते हैं, पानी को देख करके शीशे समझते हैं, और आग को देख करके पानी समझते हैं, पानी को देख कर आग समझते, बिल्कुल विनिमय धर्म। अब कैसे होता है मोहित कोई नहीं समझ पाता है, यही तीन सर्ग यही तीन प्रकार की जो गुणमय सृष्टि है, यही से महान सृष्टि उनका इस चक्र में फंसे हैं, तृतीय सर्ग मसा धमना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं, ऐसे अद्भुत शक्तिधारी संपूर्ण अभिज्ञ स्वराट, संपूर्ण सृष्टि के सृष्टिकर्ता पालन करता संहार करता संयोजक करता सर्वज्ञ सर्वज्ञाता होकर भी कोई मैंने प्रैक्टिकल फील्ड पर नहीं रहते हैं, कहां रहते हैं, धामना स्वयं सदा सदा अपने घर में रहते हैं, अपना धाम में रहते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, अपने धाम गोलक में रहते हुए भी प्रत्येक प्राणी के अंदर भी प्रेजेंस है उनका, प्रेजेंस है उनके शक्ति से प्रकट है। तो धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम, अपना धाम में सदा रहते हुए भी हमेशा इस मायारूपी सृष्टि का ये जो झूठापन है, जो कुहुक है, जो मोह है, उसको सदा निरस्त कर रहे हैं, हमेशा निरस्त, यहां कोई छल कपट कुहुक कुछ नहीं काम करेगा, हमेशा उसको निराशन करेगा, माया का गुण यहां नहीं काम करेगा, माया के छल माया के प्रताप उनके पास काम नहीं करेगा। धम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमही, उन परम सत्य को मैं ध्यान करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, जिनको प्रणाम करने से ही इस मायामय जगत का माया मोहरूपी कुहुक निरसत हो जाएगा, निकल जाएगा, आप निर्माय हो जाएंगे। ये है भगवान गीता में भी कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इस जगत जिस माया के द्वारा सृजन हुआ है ये गुणमयी माया है, तीन गुण से बना है, उसके पार पाना किसी के बस की बात नहीं। दुरत्यया बहुत मुश्किल है, कोई नहीं पार पाएगा। फिर क्या उपाय है? न मामे वै प्रपद्यन्ते माया में तांतरंतिते, मेरी शरण में आएगा तो ही पार पाएगा, नहीं तो नहीं, है ना। नहीं जैसे कभी कभी हम जाते हैं कोई काम करने के लिए, बड़े बड़े आदमी के पास धन इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, कोई काम के लिए जाते हैं, तो पहले जमाने में तो बड़े बड़े लोग अपने घर के सामने एक बोर्ड लिखते थे, शुभ लाभ सुस्वागत ऐसे लिखते थे ना, स्वागतम। लेकिन आजकल ये सब फलक नहीं लगता है, ये फलक लगाते हैं क्या, कुत्ते के प्रति सावधान। कोई साधु संत घर में आ ना पावे, जैसे सावधान पहले से कर देते हैं, आने से कुत्ता खा जाएगा केयरफुल। लेकिन इस्कन वाले साधु तो कुछ अनोखी है, वो तो घुस ही जाएंगे वो नहीं मानेंगे। अब चले गए, गेट खुला था, बिना कलिंग बेल बजाए गेट के अंदर चले गए, और उनका जो कुत्ता था बहुत बड़ा आलसी सियान डग, वो कैसे खुला था, वो देखा दूर से, अरे विकट मूर्ति करके आवाज करके झपट पड़ा आपके ऊपर, आपका तो हालत खराब, अब क्या करूं, अब कुत्ते के सामने उसको रोकने जाएंगे कोई आपका शक्ति काम करेगा, वो तो खा जाएगा, उसके नाम में नालिश करेंगे कोर्ट के, से कोई काम करेगा क्या, कुछ नहीं होगा, तुम क्यों गया, वो कुत्ता है तो काटेगा, आक्रमण करेगा। अभी आप अपने शक्ति बुद्धि लगाओ, कुछ काम नहीं करेगा, मर जाएंगे, मरे जाएंगे, कुछ नहीं करो, विकल होकर के इस घर के मालिक को पुकारो, ओ प्रभु जी, प्रभु जी आपके कुत्ता खुला हुआ है, खा जाएगा, प्लीज प्लीज बचाओ बचाओ। तो मालिक घर में बैठा था, आपका आवाज सुना कि अच्छा अच्छा वो डिबोटी आए क्या, प्रभु जी आए, अरे कुत्ता खुला है क्या, अब क्या करें, वो तो खा जाएगा, कुछ करो। तो घर में बैठे बैठे मालिक ने बोला, ए मिट्टू ए मोती चुप, अभी वो घर में बैठा है, कुत्ता कहां है देखा भी नहीं, वहीं से आवाज देगा तो क्या होगा। वो कुत्ता जो भीषण रूप लेकर भागा आ रहा था, जैसे उनके मालिक का आवाज सुनाई पड़ेगा उसको चुप, तो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, तुरंत चुप हो जाएगा। वो मालिक दौड़ कर आएगा कि सच में कुत्ता काटा तो नहीं तुझे, नहीं नहीं आ ही रहा था, आपने आवाज दिए थोड़ा थम गया, अब आ करके उनके सामने इधर जाओ, आपके आपको पकड़ लेगा, आपके हाथ पकड़ करके जब लेकर जाएगा घर के अंदर, तो वही भयंकर आलसी सियान कुत्ता आ करके आपको सूंघेगा, पूंछ हिलाएगा आपके सामने, और दोबारा आप घर में जाएंगे आपको ऐसा ट्रीटमेंट करेगा, कैसा करेगा, पूंछ हिला हिला करके आपको स्वागत करके ले जाएगा, फिर नहीं भूकेगा, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इसी प्रकार जैसे मालिक के कुत्ता है, ऐसे भगवान की कुत्ता है माया। अगर हम भगवान को ऐसे पुकारेंगे बचा बचा करके, वो ऊपर में आपने धाम में, धामना स्वयं सदा, वही धाम में बैठ करके एक आवाज दे देंगे, अरे चुप, तो आप माया से मुक्त हो जाएंगे यहीं पे, वही माया आपको पूछ हिला करके सूंघ सूंघ करके ले जाएगा, है ना। नहीं अब जो आपके ऊपर काटने के लिए इतने आवाज करके भाग रहा था, अब वही चुपचाप पूछ हिला करके ले जाए सदा के लिए। एक बार इंट्रोडक्शन तो हो जाए, उनको पता चल जाएगा नहीं हमारे आदमी मालिक के आदमी है, फिर नहीं करेगा उत्पात। तो इसी प्रकार उनको प्रणाम करने से धाम्य स्वेन सदा निरस्त कुहकम, इस कुहक को निरस्त कर देंगे सत्यम परम धीमही। उनको ध्यान करो, उनको प्रणाम करो, तब इससे बच सकते हैं। इस प्रकार इस प्रथम मांगलिक श्लोक में श्री भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने के बाद दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश करते हैं। दूसरे श्लोक जो है उसमें भागवत के क्या विषय वस्तु है उसको बताते हुए कहते हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवत्रो परमो निर्मशराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवतम तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरेश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्ध्यत्र कृतिभिः सुसुसुभिः तत्क्षणात्। यह भागवत पुराण भौतिक कारण से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के लिए कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीन प्रकार के संताप को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार के अनुशीलन से उनके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परम निर्म शराणाम सताम। इसमें तीन प्रकार तीन बार अत्र शब्द आया है इस श्लोक में, आप ढंग से पढ़ेंगे। प्रथम लाइन में आया धर्म प्रोजित कैतव, अत्र परम निर्मशनानम सतम। अत्र मतलब यहां पर इस भागवत को जो विषय वस्तु है क्या है, न उन धर्म के बारे में बताया गया जो धर्म कपट रहित है, जिसमें कैतव धर्म को प्रोज्जित कर दिया गया। प्रोज्जित मतलब झाड़ू लगा करके साफ कर दिया गया, बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। किसको क्लीन किया गया, ना जो कैतव धर्म है, छल धर्म है, उसको साफ कर दिया। केवल सत्य धर्म को यहां रखा गया, निर्णय किया गया। धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म को प्रोज्जित करके अत्र, अत्र कैतव धर्म को तो निकाल दिए, प्रोज्जित कर दिए, फिर रखे क्या, ना परम निर्मश्राणाम सताम, परम धर्म को दर्शित किया गया। इस परम धर्म को कौन आस्वादन कर पाएगा, तो उसका अधिकारी भी निर्णय किया गया। वस्तु निर्णय किए कि इसमें परम धर्म का निर्णय किया गया है, परम वस्तु का निर्णय किया गया है, लेकिन ऐसे परम वस्तु परम धर्म का जानकार करने वाले व्यक्ति क्या अधिकार क्या होता है। अधिकार के बारे में कहते हैं निर्मशराणाम, जो लोग दूसरे का उपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए मन में जिसका विचार है, वो ही इसको जानने के लिए अधिकारी है। निर्मशराणाम, मच्छर शब्द का अर्थ हम जानते हैं, ये मच्छर नहीं है, मतलब द्वेष। मच्छर शब्द का भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत के हिसाब से अर्थ करते हैं। वो बोलते हैं, पर सुखे दुखी नित्य मिथ्यावासी, पर दुखे सुखा कर। अपने परिचय देते हुए कहते हैं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। क्यों भाई दुखी रहते हो, क्या आपका दुख के कारण है? मेरा दुख के कारण ही है कि मुझे छोड़ करके मेरे अगल बगल में जितने लोग सब सुखी रहते हैं, उनके सुख देख करके मैं मर जाता हूं, हमेशा दुखी रहता हूं। वो क्यों इतना सुखी है, वो क्यों इतना सुखी है, मर गया वही मेरा परम दुख है। आपके पास अच्छा मकान है, अच्छा दुकान है, आपका भी अच्छा गाड़ी है, अब चलते हैं ठीक ठाक है, लेकिन आपके घर के पड़ोस में जो आपका नेवर है, उन्होंने एक नया गाड़ी और खरीद लिया, अच्छा क्वालिटी गाड़ी, बस आप अच्छा खासा रहते थे, लेकिन उसी समय से आपका दुख बढ़ गया। अब क्या कर? दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? आप तो ठीक ठाक हो, नहीं मैं तो ठीक ठाक हूं, लेकिन उनका क्यों अच्छा गाड़ी है, वही मेरा दुख। ये केवल उनके हृदय में नहीं, हम सभी के हृदय में होता है ना। नहीं सच, आपने आपने आपको पूछ करके देखिए। कभी कभी आप संडे फिस्ट में जाते हैं, भंडारा में लाइन करके पंगत बैठते हैं, तो परोसा जाता है। जब परोसा जाता है तो आप सच बोलिए मत, आपने मन को पूछिए। आप कई आइटम परोसा जाता है तो आप अपने पत्तल को पहले देखते हैं ना, बाजू वाले के पत्तल को पहले देखते हैं? सच बताइए, आपके पत्तल में दो गुलाब जामुन भी है, सबको दो दो दिया, लेकिन कहीं में तीन कहीं में चार देखा, बस खत्म। अभी खाया नहीं, पहले से दुखी हो गया। ये तो इम्पार्शियलिटी करते, ये व्हाट इज दिस, ये पार्शियलिटी ठीक नहीं है। गाली वहीं से शुरू कर दी, अरे भाई खाओ तो सही, मांगो और चार मिल जाएगा, नहीं ऐसा क्यों, यहां गरम पूरी फुला हुआ दिया मुझे ऐसा दे दिया, अरे तो खाया ही नहीं, तो बिना खाए पहले से देखेंगे पत्ते को, इधर अपने पत्ते को नहीं देखेंगे पहले, है ना। नहीं ये हमारा सभी का स्वभाव है। तो दूसरे क्यों सुख में है, यही मेरा दुख का कारण है। तो बोलते हैं अब कभी सुख नहीं होता, हमेशा दुखी रहता ना, कभी कभी सुखी होता हूं। कब सुखी होता है ना, जब दूसरे का दुख देखता हूं, तो ठीक हुआ अब थोड़ा सुख मिल गया, उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, हाँ ठीक है, ओह आज मैं नारियल तोड़ूंगा। परा दुखे सुखी, परा सुखे दुखी, इसी को कहते हैं मच्छरता, यही उसका सही अनुवाद है। तो जो उसका पास ऐसे गुण होगा, इस भागवत के वो अधिकारी नहीं है, इस परम धर्म का वो अधिकारी होंगे जो निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर ऐसे गुण ना हो वही उसके अधिकारी हैं। परम निर्मत्सराणाम सतान वेद्य वास्तव अत्र वस्तु शिवदंग, यहां दूसरे लाइन में फिर अत्र आया, वास्तव वस्तु अत्र केवल परम वस्तु परम धर्म के बात नहीं, वास्तव वस्तु का भी निर्णय किया गया है। वो वस्तु कैसा है ना, शिवदम मंगलदायी है, परम मंगलकारी, प्रत्येक प्राणी मात्र में जो कल्याणकारी हो, जो मंगलकारी हो, वही वस्तु का निर्णय किया गया। शिवदम कैसे कल्याणकारी है ना, तापोत्रय उन्मूलन, तीन प्रकार के ताप से उबारने वाली है, ऐसे कल्याणकारी है। त्रिविध ताप का आपको पता भी होगा, है ना, नहीं आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन प्रकार ताप को उन्मूलन करने वाले ये मंगलकारी वस्तु है। ऐसे श्रीमद् भागवत, यही उसके वस्तु है, यही उसका विषय है। महामुनि कृते, महामुनि साक्षात व्यासदेव है, महामुनि साक्षात कृष्ण भी है। कृष्ण सबसे पहले मुनि रूप में नर नारायण कृप तपस्या कर रहे हैं, वो भी महामुनि है। महामुनि कृते, क्योंकि उन्होंने चतुष्लोक रूप में ब्रह्मा जी को कहे, इसलिए वो भी उनके कृत है। श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परेरेश्वरे, फिर दूसरा शास्त्र का और क्या आवश्यकता है, जो साक्षात महामुनि ने उसको दिए, क्यों उसमें क्या खूबी है। तो चौथा लाइन में और एक अत्र शब्द लगाते हैं, सद्य हृदय अवरुद्यते अत्र कृति भी, सद्य हृदय अवरुद्यते अत्र, तीसरा बार अत्र शब्द आया, कृति भी सुसुस्वी तत्क्षणा, सुसुस्वी शब्द का अर्थ है जो सुनने की इच्छा रखते हैं, जो सुनने के इच्छा रखने वालों के लिए कहा गया सुसुसुही। तत्क्षणात् मतलब तुरंत, जो भागवत को सुनने का इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, उनका तुरंत क्या हो जाएगा, तत्क्षणात् न सद्य इमीडिएट, सत्य मतलब समझते ना, तुरंत हृदय अवरुद्धते, तुरंत उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाएगा। कौन अवरुद्ध हो जाएंगे? सी हरि, सी हरि उनके हृदय में तत्क्षणात सत्य अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अवरुद्ध मतलब बोलिए माता जी, रोकना जी, अफेक्शन, बाधा। और थोड़ा सोचिए, हाँ, अटक जाना, खाली अटक जाना नहीं। अवरुद्ध मतलब ये इसे रोध दिया गया कोई रास्ता ही नहीं निकलने के लिए, ऐसा आपको रोक दिया गया जिसे निकलने का रास्ता ही ना हो, तो अवरुद्ध हो गया। मतलब सारे रास्ता चारों तरफ से रोक दिया, ढांक दिया गया। हाँ बिल्कुल, चारों तरफ अवरुद्ध कर दिया गया, ऐसे घेराव कर दिया गया उसको, वो निकल ही ना पावे, इसको कहते हैं अवरुद्ध हो जाना। तो मतलब श्री हरि भगवान जो भागवत सुनना चाहते हैं, अभी सुने नहीं, सुनने के प्लानिंग की इच्छा भर किए हैं, तो तुरंत सुनने की इच्छा की तो दौड़ करके सत्य आ करके इनके हृदय में ऐसे बंध जाते, अटक जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते, निरसन, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, विचार अवरुद्ध हो गए, बंध जाते हैं हृदय में, निकल ही ना पावे। कोई ऐसा शास्त्र है जो इस प्रकार कर सके? ऐसे प्रभाव किसी का है? जिस शास्त्र को आस्वादन करने का इच्छा मात्र से श्री हरि आपके हृदय में आपने आप आकर ऐसे बंद जाए कि निकल ही ना पावे, ये महाकृष्ण आकर्षण शक्ति श्री भागवत का है। इसमें टीकाकार आचार्य लोग कहते हैं, ये जो श्लोक में तीन बार अत्र शब्द आया है, प्रथम अत्र शब्द से कहते हैं, अत्र मतलब इसके लिए दिया गया कि इस भागवत में परम धर्म निर्णय किया गया है, बाकी कोई शास्त्र नहीं जिसमें अकैतव धर्म परम धर्म का वर्णन किया हो, यही एकमात्र शास्त्र है जिसमें परम धर्म का वास्तविक निर्णय किया गया है, इसलिए अत्र शब्द। दूसरी बार अत्र शब्द क्यों आया? बोलते इसी एक ही शास्त्र है जिसमें परम वास्तव वस्तु का परिचय प्राप्त होता है, यहां कोई अवास्तव नहीं है। वास्तव क्या है, वास्तव वस्तु क्या है? बोलते हैं श्री भगवान ही वास्तव वस्तु है, भगवान के नाम, भगवान की धाम, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, ये सारे वास्तव वस्तु है, उन्हीं का ही निर्णय इसी शास्त्र में और किसी में नहीं है, इसलिए दूसरा अत्र आया। तीसरी बार अत्र शब्द का क्यों आया? उसमें तीसरी बार अत्र शब्द इसलिए आया क्योंकि यही एक ही मात्र ऐसे शास्त्र है जिसके द्वारा भगवान श्री हरि तुरंत ही आपके हृदय में बंध जाते, अवरुद्ध हो जाते हैं, और कोई शास्त्र के ऐसा प्रभाव नहीं है। सद्य हृदय अवरुद्धते त्री, सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी सुशुष्य भी तत्क्षणात्, ये उनका विषय वस्तु है, वस्तु है। फिर इस भागवत के मांगलिक का जो तीसरी श्लोक है जिसमें कल्याण के याचना करते हैं, आशीर्वाद याचना करते हैं, उसमें कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतंग रसमालयं मुहुरहो रसिको भुवि भावुका। आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे रसिक जन, इसको भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा गया, पहले शब्द का सुसुसु भी नहा सुनो, लेकिन कैसे सुनो? बोलते कान से नहीं, कान से केवल सुनना होता है, कान का दूसरी क्रिया भी होता है क्या? यहां कहते पीवत पियो, भागवत को सुनना नहीं, क्या करना है? पीना है, पान करना है। हम तो पान करते हैं तरल वस्तु को, पानी वस्तु को पान किया जा सकता है, कोई कठिन वस्तु को पी सकता है को? भाई खाने का बात नहीं कहा गया, तो फिर वो क्या है? बोलते रस है वो, और रस है भागवत क्या है? रस। कोई कठिन वस्तु को भी रस कहा जाएगा? रस का अर्थ है कोई तरल पदार्थ, कोई पेय पदार्थ रस रूप हो सकता, रस हो सकता है, रस है। कैसा रस? न रसम आलयम, रस का स्टोर है वो तो, रसम आलयम, उसको पियो, भले कान के द्वारा पीना पड़े, कान के द्वारा पीना पड़े, पियो भर भर करके। कब तक पीते रहूं? एक ग्लास दो ग्लास नहीं, जब तक आपका आखिरी सांस है, जीवन का अंतिम श्वास पर्यंत पीते रहो, फिर बंद मत करो, दोबारा शरीर मिले तब भी पीते रहो, मतलब बंद ही मत करो। पी बता शब्द में आगे फुल स्टॉप नहीं लगाया, भविष्य पर्यंत कहा गया पीते ही रहो, बंद नहीं हो सकता। पी पी करके मूर्छित होकर गिर पड़ा, ठीक है पीने का अवस्था नहीं, फिर मूर्छा छूटा उठा, फिर पियो, मतलब बंद ही मत करो, पीते ही रहो। पी बता कौन सा ऐसा रस है भाई पिए में? किसी भी अच्छे अच्छे लस्सी मिलता है, आम के रस पीता हूं, ये रस पीता हूं, एक दो ग्लास से पेट मन नहीं करता पीने के लिए, रुचि अरुचि हो जाता है, ऐसा कौन सा रस बोले पीते ही रहो? बोले आपको पता नहीं, ये रस अपना तुम्हारा जैसा बनाया हुआ रस नहीं, केमिकल हेमिकल कुछ नहीं उसमें, ऐसे रस है। कौन सा रस है? फल रस है, फ्रूट जूस। कौन सा फ्रूट जूस भाई? बोलते निगम कल्प तरूर, निगम आगम कहा गया शास्त्र को, वैदिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष समझते किसको कहते हैं? कल्प वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक प्रकार पेड़ होता है, जिसके नीचे जाकर के आप जो कल्पना करेंगे सो पूरा हो जाएगा। यह कल्प वृक्ष का खासियत है, जो इच्छा करे सो दे दे, कल्पतरु है। लेकिन कोई भी पेड़ हो उसका अपना एक फल होता होगा, लेकिन आप कोई भी फल मांगो तो दे देगा, कल्प वृक्ष है। लेकिन जो वो पेड़ है उसका अपना भी तो एक फल होगा, जैसे कोई आम का पेड़ हो, आम का पेड़ अगर कल्प वृक्ष होगा उसको आप कटहल मांगो, नारियल मांगो, केला मांगो, अमृत मांगो, सब दे देगा, लेकिन जो आम का पेड़ है, आम ही आपका स्वफल है ना, नहीं अपना फल तो आम है, लेकिन आम आप मांगो देगा, नहीं मांगो कुछ भी मांगो सभी दे देगा। लेकिन जो पेड़ है अपना अपनी फल क्या है? आम है, क्योंकि आम की पेड़ है। ठीक इसी प्रकार जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे बैठकर आप कुछ भी कल्पना करो मांगो वो दे देगा, लेकिन इस कल्प वृक्ष क्या है कि अपने स्वभावगत स्वागत फल है, अपनी जो पेड़ है उसी का फल है, वो फल ये है। ये फल ये है उनके सर्वगत फल, निगमारूपी कल्प तरुका, शास्त्र रूपी कल्प तरुका, वृक्ष के नीचे आप कल्पना करेंगे तो पूर्ण करने का, लेकिन आप कल्पना कुछ नहीं किए, कल्प वृक्ष का नीचे जाकर के अब कुछ भी कल्पना नहीं किए तो आपको क्या मिलेगा? जो उस पेड़ का असली फल वही मिलेगा, बिना मांगे वो मिलेगा, जब मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, दूसरा सब मिलेगा। तो मतलब उस पेड़ का असली फल का अगर चखना चाहते हैं तो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कुछ मांगो मत, कुछ कल्पना कामना करो मत, भय फंस जाएगा, ठक जाएगा, चुपचाप कुछ नहीं कल्पना करो, चुपचाप बैठो, फिर वो पेड़ का जो आपने असली फल पक करके माछी उड़ हो करके पेड़ के पका हुआ फल गिरेगा सो मिलेगा। जब कुछ मांगे सो मिल गया, वो तो गया। तो निगम रूपी कल्पतरु का ये भागवत कैसा फल है ना, गलितम फलम। गलित मतलब पूरा पेड़ से पका हुआ, मतलब नहीं कि पेड़ से तोड़ करके। ये क्या देते हैं आजकल, एक कार्बाइट दे करके और क्या दे करके जबरदस्ती पकाया गया, फ्रिज में रखा गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल पेड़ से पका हुआ है, सूरज की ताप से, आग से, प्रकृति के द्वारा पका गया। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बिल्कुल गल गया है, पूर्ण पक्व है, परिपक्व अवस्था में जो फल है, गलितम फलम। उसके ऊपर में आप लोग तो पेड़ के पका हुआ फल कभी खाए होंगे ना, नहीं जो गांव के होंगे, हाँ ये बूढ़े बूढ़े लोग तो खाए हैं पेड़ के पका, कितना अच्छा होता है, हाँ। और ये फल अगर उसको तोता चोंच लगाया होगा तो उसका मधुरता तो कुछ और है। सुख मुखात, यहां कह गया ये भागवत ऐसे निगम कल्पतरु का गलित फल है। उसके ऊपर कहां से निकला ये, सुखदेव जी ने अपने मुख से बखान किया, मतलब सुख ने मुख चोंच लगाया इसी फल के ऊपर, सुख ने तोता ने चोंच मारा। जो तोता के चोंच मारा हुआ फल, पेड़ से पका हुआ फल, उसका जो मीठापन तो कुछ और है, अवर्णनीय है। तो सुख मुखात अमृत द्रव संयुक्त, सुख का तोता का चोंच लगने के कारण उनका मीठापन में कुछ और एक्स्ट्रा अमृत द्रव चढ़ गया, लेप आलेप ऐड हो गया, कुछ एक्स्ट्रा स्वाद और बढ़ गया उसका। अमृत द्रव संयुक्त मतलब वो ऐसा फल है, उसको गलित इसलिए कहा गया कि फल के अंदर केवल रस ही रस है, ना तो उसमें गुठली है ना छिलका है, कुछ नहीं है व्यवधान, केवल रसम आलयम, बोले केवल रस ही रस भरा है, कोई गुठली छिलका या कोई उसका रोय वगैरह होता ना, ये कुछ नथिंग नहीं, क्लियर कट फिल्टर जूस, बिल्कुल फिल्टर जूस। कोई रुकावट आए, खांसी हो जाए, गले में उतर जाए, लग जाए, उतरे ना, ऐसा नहीं, क्लीन डालो तो फटाफट उतर जाए, ऐसे जूस है तो उसको पियो, ये रसमाल है, ऐसे फल है। तो मैं पहले से कहा था ये भागवत है फल, पके हुए फल रस, फल रस को पीने के लिए पाचन शक्ति होना चाहिए, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाए, है ना, नहीं तो इसलिए दूध पी करके जो थोड़ा मजबूत है वही उसको पिएंगे, फल पिएंगे, नहीं तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पहले गीता को पी करके थोड़ा शक्ति हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, दूध पी करके फिर ये फल को रस को पिएंगे। तो ऐसे अमृत द्रव संयुक्त फल रस को कौन पिएगा, हम लोग पिएंगे। इसमें कहा गया पीने वालों का नाम लेकर के, पी बता रसिको, जो रसिक जन है वो ही रस को पी सकते हैं, जो रसिक नहीं है वो क्या पिएगा, वो रस का ज्ञान है ही नहीं उसको, वो क्या पिएगा। जो रसज्ञ है, जो रस के बारे में जानता है वो बताएगा, अरे तू क्या खाया, है ना, नहीं वो पता है उसको। तो इसलिए माल खाने वाले, माल पहचानने वाले रसिक जन के लिए कहा गया, रसिक भूवि भाव का, ऐसे भावुक जन, ऐसे रसिक जन का ये संपत्ति है भागवत। वो लोग तो उसको पीते ही रहते हैं, कर न पुटे पीते ही रहते हैं। मुंह के द्वारा पीने के लिए नहीं कहा गया, क्यों, हम तो सब पीते हैं भौतिक द्रव्य पेय वस्तु मुंह से, क्योंकि मुंह से पीने से व्यवधान है, जीवा भी थक जाता है, उसको अलग अलग रस थोड़ा बहुत चाहिए, टेस्ट। दांत भी कभी कभी टपने, वो भी बाधा सृष्टि करते हैं, जीवा है, ओठ है, बंद होता है, ये है, कितना देर मुंह खोलकर पीते ही रहते हैं, थक गया थोड़ा गिलास रुक दो, थोड़ा दम ले लूं, मुख में ये सब अपूर्णता है। लेकिन कान में कोई ठिप्पी लगता क्या? पूरा खुला है दिन रात 24 घंटा, और वो रस को कोई ग्लास उपलास नहीं, शब्द रूप द्वारा आएगा, वो वायु रूप से, वायु रूपी पात्र शब्द द्वारा उसको आएगा, अपने आप भरते जाएगा, कोई उठा उठा कर डालना भी नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं कर पड़ता उसको पीने के लिए। प्लेट में डालो, थोड़ा हवा लगाओ, फूंक मारो, फिर जीवा लगाओ, ओठ लगाओ, पियो, कुछ नहीं करना पड़े, वहीं बैठो हाथ पर बंद करके सुखासन में बैठे रहो, और कान तो खुला पहले से भगवान कर रखे हैं, यहां से ऑटोमेटिक जाएगा और रस भरते जाएगा, कर न पुटे, कोई श्रम नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, केवल एक ही आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है? पीने की इच्छा, पीने की इच्छा होना चाहिए भाई, नहीं तो पिएंगे कैसे? कान खुला है, शब्द भी मिल रहा है, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं, मतलब यहां बैठे भी है सामने सामने, इतने एम्पलीफायर डबल लगा करके डबल साउंड में साउंड जा रहा है, लेकिन जिसका इच्छा ना हो वो वहीं सामने बैठ करके मन और कहीं घूम रहा है, वो पूछेगा कैसे ऐसे बोले थे क्या? क्या हो? वो मैं थोड़ा अनमन्य अन्य मनस्क था, मन कहीं और था, सामने तो बैठा था, कान भी दोनों खुला था, साउंड भी फुल भल्ली में चल रहा था, लेकिन मेरा मन कहीं और था, तो कैसे पिएंगे? नहीं, आवश्यकता ये है। एक क्लास में, आजकल स्कूल कॉलेज में जो एक क्लास में कितने विद्यार्थी बैठते हैं? 50-60 बैठते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 30-35। चलो, हम लोग के जमाने में 156 बैठते थे, आजकल इतने कम हो गया। चलो 30-35 लड़के एक कक्षा के अंदर बैठते हैं, एक रूम के अंदर बैठते हैं, एक समय में एक टीचर आता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक ही समय में वो वक्तृता देता है, पढ़ाता है, उनको सिखाता है, 35 व्यक्ति आपने डबल डबल कान में उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक ही लेक्चर, एक ही विषय को एक ही साथ में सबको सुनाया, लेकिन जब परीक्षा होगा, एक होगा फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, बाकी सब लग डाओ। क्यों? सब्जेक्ट एक ही था, क्लासरूम एक ही था, टीचर एक ही था, समय एक ही था, तो फल इतने अलग अलग क्यों हुआ? वो भी एक ही होना चाहिए था, सब जो एक ही था, नहीं, वो अलग अलग होगा। क्यों? सब तो सुन रहे थे, लेकिन सुनने में सुनना है ना? नहीं, कौन कितने मन के एकाग्र करके सुना, कोई दुई अग्र क्रिया, कोई त्रि अग्र क्रिया, है ना? कोई मन को एक करके सुनने में लगाया, कोई मन को दो किया, थोड़ा सुनू थोड़ा उधर भी सोचू, कोई और कहीं लगाया, कोई और कहीं लगाया, सब चलता रहता है। तो फिर जितना परसेंटेज इधर दिया, इतना परसेंटेज मिलेगा, है ना? नहीं, यद्यपि कोई काम नहीं करना पड़ता, कान को खुलना नहीं पड़ता, साउंड को डालना नहीं पड़ता, अपने आप खुला है, अपने आप अंदर जाता है, लेकिन ऐसे कंडीशन है, अगर मन साथ में एक मन नहीं करे तो बेकार, पूरा 2 घंटे गया, सुन भी नहीं पाए। एक कथा में आप जैसे माताएं बहुत सारे बैठे थे, और कथा व्यास जी कथा सुनाए, वो गीता के स्तुति श्लोक पढ़े, बोले सर्व पुनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीर भक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। बुढ़िया सुना था श्लोक, सो गया था। बोला चलो 2 घंटा आराम से निकाल लिया। लास्ट में जब उठे तो बुढ़िया हाथ उठाया, बोला मेरा प्रश्न है, शंका है। पंडित जी बोले क्या प्रश्न बुढ़िया? तो बोले पंडित जी आपने जो 2 गधा के बात कहा था ना, तो बताओ वो कौन है? पंडित जी बोले मैं तो 2 गधा के बात नहीं कहा, मैं तो गीता की बात कर रहा था। नहीं नहीं मैंने सुना, मैंने एकाग्र होकर सुना, आप 2 गधे के बात कहे। बोले कौन सा 2 गधे? तो मुझे पता नहीं। नहीं नहीं आपने कहे ना, बताओ तो सर, याद दिलाओ कब ना आपने बोले ना श्लोक में पहले उच्चारण करके सर्प उपनिषदो गावो 2 गधा गोपाल नंदना, अब 2 गधा के बात तो कहे, बिल्कुल सुनाओ। वो बोलते 2 गधा माने दूध दुहने वाला, लेकिन ये बुढ़िया ने सुना 2 गधा। बोले आपने 2 गधा की बात कहा, वो कहा है? पंडित जी बोले अच्छा बाकी ना, बाकी तो मैं आराम कर रहा था। बोले माता जी वो 2 गधे से एक मैं हूं और एक आप है। और क्या कहें, यही से एकाग्र मन से अगर सुनेंगे तो ऐसा ही श्रवण फल प्राप्त होगा, श्रुति फल प्राप्त होगा, है ना? तो ऐसे निगम कल्पतरु का गलितम फल होते हुए भी, रस का आगार रस का आलय होते हुए भी, अगर आप रस आस्वादन के लिए मननिवेश नहीं करते, रसिक नहीं बनते हैं, तब उस रस को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। यही आवश्यकता है। जितने ही एकाग्रता के साथ सुनेंगे, सुनने के बाद फिर उसको मनन भी करेंगे, थोड़ा सोचें जाकर के घर बैठकर क्या मैंने सुना, क्या बताया गया था, तब जाकर वो बैठता है। नहीं तो जस सुत्वा जो सुना, हम ऐसे बैरागी है उसको यहीं पर इस स्टेज में ही छोड़ के जाएंगे, गेट के बाहर तक नहीं लेंगे, यहीं छोड़ के जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। उस रस को अंदर ले करके आत्मसात करके लेना चाहिए साथ में, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इस मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, इस परम निर्मत्सर ग्रंथ भागवत पुराण में निर्णय किया गया कि यही है। जब परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन समय था, हजारों ऋषि मणि मंडली अलग अलग संप्रदाय के गोष्ठी के जुटे हुए थे, महाराज जी हम ये करेंगे, हम बचा देंगे, वो कर लेंगे, आप जैसे राजा जी कैसे मर जाएंगे? परीक्षित महाराज बोले आप लोग सब बड़े बड़े मुनि ऋषि जन है, बड़े भाग्य से मिले हैं, लेकिन मेरा तो मन में एक शंका है, क्या करूं, मेरा तो परमायु पूर्ण प्राप्त है, गिनती में 1 दिन तो गया, 6 दिन बाकी है। ऐसे जिनका मृत्यु केवल 6-7 दिन ही पक्का निश्चित हो गया है, ऐसे मुमुष व्यक्ति जो मरने वाला ही हो, ऐसे मनुष्य को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिनसे उनका जीवन का परम लक्ष्य परम पुरुषार्थ प्राप्त सफल हो जाए? सचमुच कहता हूं पता ही नहीं परम पुरुषार्थ है क्या, जीवन के परम लक्ष्य क्या है यह भी तो पता नहीं हमको। क्या सोचेंगे क्या प्राप्त हो जाने से परम पुरुषार्थ हो जाएगा? तो इसलिए भागवत ग्रंथ में मनुष्य जीवन का आत्यंतिक कल्याण, परम पुरुषार्थ, परम प्रयोजन क्या है यह निर्णय किया गया, और उस परम पुरुषार्थ परम कल्याण का प्राप्ति का उपाय भी निर्धारित किया गया। इस उपाय है क्या, केवल एक मन होकर के इस भागवत को श्रवण करो, बस इतने मात्र में आपके जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। आज के लिए आपका समय हो चुका है, अभी आरती करेंगे, भगवान की आरती करेंगे।